देवियों सज्जनों, गीता के चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 11 बोलिए मेरे साथ। नहि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। Verily, it is not possible for an embodied being जिसके पास एक शरीर है, to abandon actions entirely. But he who relinquishes the rewards of actions is verily called a man of renunciation. तो ऐसा कोई प्राणी, it's not only human being, any being who has a life or who has a body, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं या एक मोमेंट का हजारवां पीस भी नहीं हो सकता जब कोई प्राणी बिना काम करते हुए रहता हो। आपको सोना भी तो एक काम है, सांस लेना भी काम है, बैठना भी काम है, खड़ा होना भी काम है। तो इसीलिए अगर कोई कहे कि कर्मों को, काम को छोड़ देना ही सन्यास है, डिटैचमेंट है, संसार को छोड़ देना ही डिटैच्ड है, तो ये भ्रम है, इल्यूशन है, क्योंकि तुम कहां तक छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे? सिर्फ जो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको छोड़ दोगे, मां बाप का केयर करना छोड़ दोगे, जिन बच्चों को तुमने पैदा किया उनका पालन पोषण छोड़ दोगे, सोसाइटी के प्रति तुम्हारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको छोड़ दोगे, बस बाकी और क्या छोड़ोगे? और जिन चीजों को छोड़ोगे उससे पाप ही कमाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटीज थे। तुम्हारे मां बाप का ख्याल रखना तुम्हारी ड्यूटीज है, तुम्हारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे एटमोस्फियर, तुम्हारे इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करना ये तुम्हारी ड्यूटीज है। तो इन्हीं को छोड़ोगे और क्या छोड़ोगे? खाना तो नहीं छोड़ोगे, पीना नहीं छोड़ोगे, सोना नहीं छोड़ोगे, बैठना नहीं छोड़ोगे, हंसना नहीं छोड़ोगे, चलना नहीं छोड़ोगे, बाकी तो सब आप करोगे। अगर कहोगे नहीं मैं ये सब छोड़ दूंगा, तो छोड़ दोगे तो एक ही हालत में छोड़ सकते हो, वो है कि जब तुम मरोगे। क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो, इवन तुम कोमा में भी हो, तब भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो तुम्हारे अंदर अननोइंगली चलता रहता है। ऐसा कोई स्टेट ऑफ लाइफ नहीं होता है जब हम बिना काम किए रहते हैं। इवन आलसी व्यक्ति भी खाता है, बहुत खाता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहना भी एक काम है देवियों सज्जनों। ये जो पड़ा रहना ये भी एक काम है। जब आप कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आप सिर्फ 10% छोड़ते हो, 90% तो करोगे। तो कृष्ण क्लैरिफाई करते हैं कि जो समझते हैं कि संसार को त्याग देना या काम छोड़ देना ही त्याग है या सन्यास है, वो झूठ है, गलत है, इम्पॉसिबल है। तो फिर सल्यूशन क्या है? कहते हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। जब कोई व्यक्ति कर्म का फल के त्यागने की कोशिश करे या जो काम वो करता है उससे डिटैच्ड होने की प्रैक्टिस करे या जो काम वो करता है उसमें डूअरशिप, ओनरशिप ना लेने की प्रैक्टिस करे, तो वो सन्यास के मार्ग पर या त्याग के मार्ग पर हो सकता है। अगर वो अचीव कर ले, कितना भी बड़ा से बड़ा काम करे, अचीवमेंट उसको मिले, पर अगर उसके अंदर वो सेंस नहीं है ओनरशिप का कि मैंने किया मेरे कारण हुआ, मेरा है, ये अगर सेंस ऑफ ओनरशिप अंदर नहीं है, बोलने की बात मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बोलने वाले हिपोक्रेट होते हैं, वो तो पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं। आप क्या फील करते हो वो आपकी अपना इंडिविजुअल मैटर है, आप क्या बोलते हो सोसाइटी से आप कैसे डील करना चाहते हो दैट्स टोटली डिफरेंट। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है अंदर से बड़े अच्छे हैं, पर द वे ऑफ उनकी टॉकिंग है, हो सकता है बड़ा रूड हो, लोगों को लगता होगा बड़ा बैड मैनरली पर्सन है, बहुत रूड है, उसको सोशियल बिहेवियर पता नहीं है, पर इसका अर्थ नहीं है कि उसका जो वो ओवरऑल पर्सनालिटी इंडिविजुअली वो खराब है, और वो अपने लिए कोई खराब नहीं है। हो सकता है आप दुनिया भर के लोगों को नफरत करते हो, हर चीज में ना कुछ दोष देखते हो, पर आपने एक ट्रेंड सिविल पर्सन बन चुके हो, आपको सिविलाइज्ड वे में बोलने की ट्रेनिंग ले चुके हो, तो आप जिसको भी देखते हो बड़े आर्टिफिशियल लैंग्वेज में यूज करते हो इंप्रेस करने के लिए, और हो सकता है लोग इंप्रेस्ड होते भी हो, पर उससे तुम्हारे अंदर का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कुछ मैटेरियल अचीवमेंट हो सकता है, पर तुम्हें अंदर की जो सुकून है, खुशी है, वो उससे नहीं मिलता। कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी जिसके करोड़ों फॉलोअर्स भी हो, करोड़ों लोग भी उसको कैसे कितना भी मानते हो, पर वो अगर ड्यूअल नेचर का है, अंदर और बाहर उसके अंतर है, उसको रात में उतने ही खराब नींद आता होगा जैसे कोई भी हिपोक्रेट आदमी को आता है, उसको उतने ही बेचैनी, दुख, परेशानी, अंदर जलेसी, बाकी चीजें होता होगा जो किसी को भी होता है, जो आपकी शांति को बिगाड़ने के लिए इनफ है। इसीलिए सन्यासी होने के लिए संसार को त्यागना, कर्मों को छोड़ना, कोई भी चीज छोड़ना, कपड़े बदलना, घर छोड़ना, वगैरह वगैरह छोड़ना, फिजिकली छोड़ना कोई मैटर नहीं करता है। अगर कोई चीज मैटर करता है, आप जो कुछ भी करते हो उसके प्रति आपकी अटैचमेंट कितना कम हो रहा है, उसके प्रति जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो कितना कम हो रहा है, उससे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मैं कितना दूर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आया, या सुख या शांति पाने के रास्ते पर आया, उसी को सन्यासी कहते हैं या त्यागी कहते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत् त्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। जो भी काम हम करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, एवरेज करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, कैसा भी काम किसी भी रूप में आप करें, उसका जितना भी रिजल्ट निकलता है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया। एक होता है इष्ट फल, डिजायर्ड, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। मैंने चाहा कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए कि खाना अच्छा होगा, अब खाना खाए और आपका जो एक्सपीरियंस हुआ वो अच्छा था, अच्छा था मतलब जो आपने चाहा वैसा था, डिजायर था। या अनिष्ट होगा, जो इष्ट नहीं है, जो डिजायर नहीं है, जो आप सोच के गए थे उस लेवल का खाना नहीं था। या मिश्र होगा, एवरेज होगा, कुछ ठीक था, सब्जी ठीक थी, वो खराब था, ये ठीक था, ये खराब होगा, मिक्सचर था। कोई भी काम हम करते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में हो, घर की लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, खुद की, कुछ भी ए टू जेड, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, अगर आप रात को सोते हैं दिन में जगते हैं, बहुत सारे लोग दिन में भी सो जाते हैं और रात को जगते हैं देर तक, तो वो भी काम ही होता है, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो कुछ भी हम करते हैं, मतलब जगने से लेकर सोने तक, मेंटली ओरली एंड फिजिकली कुछ भी करते हैं, उसका तीन तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। या तो जो हमने चाहा, जैसा चाहता वैसा फल मिला, या जैसा चाहता वैसा नहीं मिला, या मिक्सचर मिला, मिक्स मिला। बच्चे पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, हो सकता है उसकी टारगेट हो कि 95% मिले, 95% नहीं मिला, बिलो 80 मिला जो कि टोटली अनडिजायर्ड था उसके लिए, या 95 मिला उसे अबव मिला जो कि डिजायर था, या 92, 93, 94 मिला, ओके मिक्स मिक्स है, कुछ में ज्यादा मिला कुछ में कम मिला। हमारे जब मैं एग्जाम्पल्स देता हूं वो सिर्फ कुछ चुना हुआ होता है, बाकी लाइफ के हर चीज में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी काम आप करते हैं, जैसे आप यहां आकर भी बैठे हुए हैं तो कोई इच्छा लेकर तो आए हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हुई, जो आपने चाहा था उसी लेवल का सत्संग हुआ या उससे कम हुआ या मिक्स मिक्स था, कुछ ठीक था कुछ गलत था, कुछ लेवल के ठीक था नहीं था, तो तीन तरह के फल हमें मिलता है, पर सबको नहीं मिलता। अत्यागी नाम, जो ओनरशिप को अभी त्यागे नहीं है, जो डिटैच्ड हुए नहीं है, जो कर्मों के फलों के पीछे पड़े रहते हैं, वर हैंकरिंग फ्रूट्स ऑफ द एक्शंस, ऐसे लोगों के लिए तीन तरह के फल होते हैं। पर जो वही उन्हीं कामों को करता हुआ दूसरा व्यक्ति, जिसने अंदर से मेंटली डिटैच्ड हो रखा है, काम को तो उतने ही ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करता है, पर फल क्या मिलेगा कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा एक्सेप्टेबल है, जो भी मिले ईश्वर का प्रसाद मान के स्वीकार करने को राजी है, अपने आप को उसका डूअर या ओनरशिप लेने के लिए कोशिश नहीं करता है अंदर से। ध्यान रखिए, सब कुछ अंदर से, बाहर से तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और करते भी हैं। और क्यों मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आसानी से इंप्रेस्ड हो जाते हैं। हर आदमी को क्या जरूरत पड़ी आपके अंदर झांकने के लिए, आपने बोला कि मैंने नहीं खाया तो लोग मानेंगे, क्यों जबरदस्ती कंप्यूटर ला के चेक करेंगे आपने खाया कि नहीं खाया, किसको पड़ी है। पर आपने खाया कि नहीं खाया आप ही जानते हो, तो सोसाइटी में आप क्या बोलते हो दूसरों के सामने वो मैटर नहीं करता। तो जो व्यक्ति अंदर से डिटैच्ड है, ओनरशिप की सेंस को नहीं रखता है, उसके लिए कोई भी कर्म का फल ना इष्ट होता है, डिजायर्ड होता है और अनडिजायर्ड होता है और मिक्स होता है। उसके लिए सब कर्मों का फल एक ही होता है, ईश्वर का प्रसाद, प्रभु का प्रसाद होता है। काम अपने पूरी मेहनत से लगन से किया, रिजल्ट जो मिला ठीक है, इसका अर्थ नहीं कि वो फिर एफर्ट करना छोड़ देता है। क्यों कोई सन्यासी ये मानता है कि मैं ओनर नहीं हो सकता, सन्यासी नहीं मानता, क्यों ये कल्टीवेट करने पर आप सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी होकर कोई ये नहीं हो सकता कि आप पहले सन्यासी बन जाएं फिर ओनरशिप ना लेने की कोशिश करें या डिटैच्ड होने की कोशिश करें, हो ही नहीं सकता, 18 जन्मों में भी नहीं हो सकता। जब ऐसा कल्टीवेट करते करते आप अचीव कर जाए तो आप सन्यासी होते हैं, पब्लिक माने ना माने। पब्लिक तो किसी चोर चक्के को भी सन्यासी मान देता है जो भगवा पहन लेता है, थोड़ा ड्रामा कर लेता है, ऐसे आशीर्वाद देने लग जाता है, मीठा मीठा बोलने लग जाता है, थोड़ी स्लो वॉइस स्लो पीच में आराम से शांति से आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठा दे, आप पैरों में गिर जाते हो, कोई चोर चक्के के पीछे भी पड़ जाते हो अगर कपड़े बदल दे तो। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जो जेन्युइनली अंदर से करता है वो सन्यासी होता है। तो जो इसका मतलब जो आम आदमी है जो इतना ज्यादा डिटैच्ड नहीं है, ओनरशिप को नहीं छोड़ पाता है, डूअरशिप को नहीं छोड़ पाता है, वो ये तीन तरह के फल पाता है। क्यों पाता है? आप 100% दीजिए, पूरे हार्डवर्क करिए, ऑनेस्टी के साथ करिए, तो भी रिजल्ट तीन तरह के होंगे। हमेशा हर काम जो आपने चाहा वही रिजल्ट वाला नहीं हो सकता। कभी कभी अबव एक्सपेक्टेशन होता है, कभी कभी बिलो एक्सपेक्टेशन होता है, कभी कभी एवरेज होता है। पर काम चारों लोगों ने पूरी मेहनत से, चारों लोगों ने एक ही टाइप का हार्डवर्क किया, उतने ही ऑनेस्टी के साथ किया, उतने ही नॉलेज के साथ किया, उसके बावजूद भी रिजल्ट चारों का अलग अलग होता है। क्यों होता है? इसका जवाब कृष्ण देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, दो श्लोक। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे संख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सर्वकर्मणाम सिद्धये, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स, देर आर फाइव फैक्टर्स आर वर्किंग बिहाइंड इट। तो कृष्ण कहते हैं वो अर्जुन, लर्न फ्रॉम मी दीज फाइव कॉजेस आर फैक्टर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्ट्स एज डिस्क्राइब्ड इन सांख्य कृतांत। दैट मीन्स एक सांख्य फिलॉसफी है हमारे हिंदू दर्शन शास्त्रों में, जो स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं, छह स्कूल ऑफ फिलॉसफी, वन ऑफ देम इज सांख्य फिलॉसफी। वैसे वेंसडे को 11:30 बजे से 12:30 तक क्लास होता है यहां, सांख्य दर्शन का ही क्लास होता है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन एवरी वेंसडे 11:30 to 12:30। तो सांख्य कृतांत द साइंस ऑफ एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। सांख्य मतलब काउंटिंग करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये यूनिवर्स को खुद को एनालाइज करना कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं जो फंक्शन करते हैं मेरे अंदर या यूनिवर्स में। जो फिलॉसफी उन चीजों पर काम करता है, डिस्कशन करता है, उसे कहते हैं सांख्य। तो सांख्य दर्शास्त्र में ऐसा बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि फाइव फैक्टर्स होते हैं जो हम जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, एक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, अबव हो, बिलो हो, उसके रीजन पांच फैक्टर काम करते हैं। कौन है वो पांच फैक्टर? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधाम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवं चैवास्त्रि पंचमम्। पांच चीजें हैं जो हमारे काम का रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। अगर मेरा काम सही हो रहा है तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा समझदार आदमी हूं, मेरा काम गलत हो रहा तो जरूरी नहीं कि मैं बड़ा स्टूपिड आदमी हूं, ये भी हो सकता है। समझदारी और स्टूपिडिटी ये भी एक फैक्टर है, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करने में कारण होते हैं कि मेरा काम का रिजल्ट क्या होगा। पहला है लोकस लोकेशन। आप कोई भी काम करते इसके दो तरह के समझने की जरूरत है। पहले हम इंडिविजुअल बेसिस पर इसको एनालाइज करते हैं, बाद में हम सोशल लेवल पर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी है, इसमें कोई एक चीज नहीं है जो काम को करने में फैक्टर होता है। पहला लोकस लोकेशन, माई बॉडी इज लोकेशन ऑफ ऑल माई माइंड इंटेलेक्ट सेंसेस सोल एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम डूइंग द कॉज ऑफ ऑल द डूइंग आर बेस्ड ऑन माई बॉडी। दूसरा है जब भी मैं कोई काम करता हूं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर करता हूं या किसी पर्टिकुलर टाइम पर करता हूं, दैट इज लोकेशन। अगर आप बॉडी ठीक नहीं है, फिजिकली आप फिट नहीं है, आप कुछ भी काम करेंगे वो सही नहीं हो सकता है। फिजिकली आप फिट हैं, कोई लोकेशन गलत चुना है आपने, कोई टाइमिंग गलत चुना है, हो सकता है काम गलत होगा, काम का रिजल्ट डिजायर्ड नहीं होगा, इष्ट नहीं होगा। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसा चीज बेचने की कोशिश करते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी जरूरत नहीं है। कोई गर्म देश में जहां बहुत गर्म होता है आप वहां ठंड के कपड़े बेचने का दुकान खोले तो हो सकता है चले ही नहीं। तो इसीलिए नहीं कि आपकी एबिलिटी में कोई काम है या कोई ईश्वर की उसमें नाराजगी है या आशीर्वाद है, नहीं, गलत लोकेशन चुना है। आपके बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ता, हो सकता है पहले फाइंड आउट करो कि कोई स्कूल तो गलत नहीं है, कोई क्लास तो गलत नहीं है। देन टाइमिंग, सही टाइम पर काम नहीं करते तो गलत इंपैक्ट पड़ेगा। कोई भी काम करें उसका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। अगर उसके राइट टाइम पर आप काम नहीं करते तो गलत होगा, सही टाइम पर शुरू करते हैं तो आपको फायदा होगा। आप स्टोर्स में जाते हैं, सुपर स्टोर्स में आप देखते हैं, वहां सीजन आने से पहले ही उस सीजन के जो भी फेस्टिवल है जो भी है उस सीजन से रिलेटेड चीजें स्टोर में भर जाते हैं। टाइम को ध्यान रख करके चीजें स्टोर में रखा जाता है। जनवरी खत्म होते होते स्टोर्स में आपकी समर के कपड़े बेचने शुरू आ जाने लग जाते हैं। तो वो लोग रिसर्च करते हैं, टाइमिंग का ध्यान रखना, लोकेशन का ध्यान रखना। एक ही स्टोर होता है, अलग अलग लोकेशन में सामान अलग अलग बिकता है। वो एचईबी वही है, वॉलमार्ट वही है, स्टोर्स वही हैं, पर आप खेती के एक पर्टिकुलर एचईबी में जाए वहां कुछ सामान मिलेंगे जो यहां नहीं मिलता और जो यहां मिलेगा वहां नहीं मिलता। ये समझदारी है कि किस लोकेशन में किस टाइप की डिमांड है वही चीजें रखा जाए, लोगों की इनकम लेवल क्या है उसी लेवल की चीज रखा जाए। अगर आप रैंडमली कोई भी चीज कहीं रख देते हैं, कितने भी प्राइस का कहीं भी रख देते हैं, आपका चलेगा नहीं। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट बिजनेस, इवन आपकी रिलेशनशिप में भी यही फैक्टर काम करता है। आपने सोचा कि आज मैं पत्नी को तारीफ करूं और उस समय तारीफ करने गए जब ऑलरेडी वो बहुत आग बबूला बनी हुई है, तो तारीफ तो वहां गुस्से को बढ़ाने के लिए और हेल्प कर जाता है। आप कहेंगे देखो जमाना खराब है, तारीफ तो कर रहा था और ज्यादा गुस्सा हो गई। तारीफ करना अच्छी बात है पर गलत टाइमिंग चुना, थोड़ा आग को ठंडा होने देते थोड़ी देर, फिर करते, फिर देखते उसका कितना फायदा होता। वाइस वर्सा भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पत्नी की तारीफ करे, पत्नी भी कभी कभी पति की तारीफ कर देनी चाहिए। बेचारे पति लोगों की यही होता है कि उनकी तारीफ पत्नियां कम करती है, उल्टा साथियों में बैठ जाए तो सारी बुराइयां निकल जाती है। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है और लोकेशन भी बहुत जरूरी है, किस टाइम पर आप करते हो। मैं गीता पर बोलता हूं, आपने कहा बहुत अच्छा लगा, गीता तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत सुनना है, बहुत सुनना है, बहुत सुनने की इच्छा है, जानना है। और एक दिन आप मुझे मिल गए किसी स्टोर पर या किसी पार्टी में मिल गए और मैं शुरू हो गया गीता का प्रवचन देना आपके सामने, प्लीज इधर आइए। आपको पता है फोर्थ चैप्टर में कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, और मैं शुरू हो गया। बेचारा वो बहुत कोशिश किया पिंड छुड़ाने के लिए, और मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगा उसने तो बोला था कि गीता बड़ी अच्छी चीज है, मुझे सुनना है, और मैं सुनाने लग गया। गुस्सा इतना आया कि उसने गुस्से में मुझे बोला कि आप यहां से चले जाओ या मैं चले जाता हूं। मैंने कहा देखो जमाना कितना खराब है कि लोग आजकल गीता सुन के भी भड़क जाते हैं, कितने पापी हो गए। वाह, बेचारा आदमी पापी नहीं है, या ना तुम पापी हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने अच्छी चीज को गलत जगह पर गलत टाइमिंग पर को सुनाया। आदमी भी सही था, वो सुनता भी, अगर सही टाइम चुनते और सही प्लेस चुनते वो सुनता जरूर, पर आपने गलत टाइम पर गलत प्लेस पर अच्छी चीज को देने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हुआ, अनडिजायर्ड हुआ, अनिष्ट हुआ। तो ये बड़ी जरूरी है कि हम कुछ भी करते हैं उसका टाइमिंग और लोकेशन डिपेंड एक फैक्टर होता है, वो कर्म का फल इष्ट होगा या अनिष्ट होगा। दूसरा फैक्टर है कर्ता। अगर इंडिविजुअली देखें मेरा बॉडी, मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी का लोकस है, लोकेशन है, और जो कर्ता जो डूअर है वो मेरा अहंकार है। अहंकार जब मैं कहता हूं फिलोसॉफिकली, वो सोशल वाला अहंकार नहीं जिसमें हम एरोगेंसी दिखाते हैं, अहंकार मतलब आईनेस। जब तक आपके अंदर वो आईनेस किसी के अंदर नहीं होता तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता, इवन मेंटली भी नहीं कर सकता। यू नीड टू फील दैट आई एम, मैं हूं। अगर आपको ये इल्यूशन हो रहा है कि आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट एग्जिस्टिंग, तो फिर ये आई एम नॉट एग्जिस्टिंग भी इट्सेल्फ एक अहंकार है, क्योंकि आप नहीं होते तो कैसे आप बोलते कि मैं नहीं हूं। ये जो आईनेस है, और ये एक फिलोसॉफिकल चीज है, मैं आपके सर को ज्यादा दर्द नहीं कराऊंगा, सिंपल है कि आत्मा और मन की जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का नाम होता है आईनेस। मैं, वो जो आत्मा और मन की कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं आईनेस, आई आम लाइफ, उसी का नाम है। वो करता है, जो डिसाइड करता है कि मुझे करना है, वही फोर्स करता है करना है, डिसीजन वही लेता है, चूज वही करता है। नॉर्मल लाइफ में कर्ता, कर्तृत्व, डूअरशिप, एबिलिटी, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने जा रहे हैं, कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, कोई दोस्त बनाने जा रहे हैं, कुछ भी, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ बेचने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई करने, नौकरी करने, कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी काम, अब बैकयार्ड में कुछ सब्जी उगाना जा रहे हैं, एबिलिटी। तो ये भी एक फैक्टर होता है। मेरी कितनी एबिलिटी है किस चीज को करने में, उससे फर्क पड़ेगा कि उसका रिजल्ट इष्ट होगा, डिजायर्ड होगा, या अनिष्ट होगा, अनडिजायर्ड होगा, या मिक्स्ड होगा। अगर मेरी ट्रेनिंग पक्की है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली आई एम कैपेबल टू डू इट, और ट्रेनिंग भी है, मुझे पता है क्या करना, तो मेरा काम एक्सपेक्टेड होगा रिजल्ट। पर अगर कमी है, मैं इन्फ्लुएंस्ड हूं किसी के कारण, इंप्रेस्ड होकर के, इन्फ्लुएंस्ड होकर के कोई काम करता हूं जो एक्चुअली मेरे अंदर उसके लिए ना टैलेंट है, ना ट्रेनिंग है, ना एबिलिटी है, तब भी मैं करता हूं तो वो काम खराब होगा। जैसे कि ज्यादातर हम भारतीय पेरेंट्स में देखते हैं, अपने बच्चों को एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में, दो चार स्पेसिफिक प्रोफेशन में डालने के लिए पूरी कोशिश किया जाता है। दुनिया में करोड़ों करोड़ों प्रोफेशन है, आदमी किसी भी प्रोफेशन में कहीं भी पहुंच सकता है, अगर उसका इंटरेस्ट हो, अगर वो एंजॉय करता हो, उसकी ट्रेनिंग हो, एबिलिटी हो, किसी भी फील्ड में। अब दौड़ दौड़ कर भी आप करोड़ों कमा सकते हैं, सिर्फ दौड़ के भी। पर नहीं, हमारे भारतीय पेरेंट्स में तो वो फोर्स करते हैं, अगर जिसमें, जिन बच्चों में थोड़ी टैलेंट है तो चले जाते हैं, बाकी एवरेज होकर रह जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी टीचर को पता चले या उसको किसी तरह मोटिवेशन आ जाए कि भाई बिजनेस में बहुत पैसा है तो मैं बिजनेस करूंगा, पर बाय नेचर वो एक टीचर है, बाय प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशन नहीं, बाय नेचर, मतलब उसको टीचिंग करने में वो एंजॉय करता है, मजा आता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो देता है तो वो खुश होता है, वो केयर नहीं करता दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पढ़ाई को एंजॉय करता है। पर ऐसे व्यक्ति को वो ट्रेंड भी है, लगा कि नहीं ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे बिजनेस में जाना है, वो एक किसी पर्टिकुलर चीज से इन्फ्लुएंस्ड होकर के बिजनेस में जाता है। अब बताइए वो बिजनेस में चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो 100% हार्ड वर्क करे, 20 घंटे भी मेहनत करे, पूरी ऑनेस्टी के साथ करे, वो अचीव नहीं कर सकता जिसके अंदर एबिलिटी है बिजनेस कर को जो कर सकता है। क्यों? कर्तृत्व की कमी है, एबिलिटी नहीं है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो हमें अपने जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट देने में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तीसरा कहा, करणम च पृथक विधम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अगर पर्सनालिटी लेवल पर देखें, शरीर लोकेशन है, आत्मा और मन का कॉम्बिनेशन जिसके हम जीव कहते हैं वो करता है, और सेंसेस माइंड ये सब इंस्ट्रूमेंट है, इन्हीं के द्वारा आप काम करते हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो बाहरी दुनिया में आपका काम, जो आप चाहते हो वही रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता, डिपेंड करता है कि हो सकता है कि आपकी एबिलिटी पूरी है, आप ट्रेंड हैं उस टॉपिक में, उस प्रोफेशन में, आपकी टैलेंट भी है, आपने परफेक्ट प्लेस एंड परफेक्ट टाइमिंग चुना है, उसके बावजूद भी काम नहीं बन रहा है, आपको जो अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, देन द थर्ड फैक्टर इज इंस्ट्रूमेंट्स। What type of tools or instrument you are going to use or you are using? You have to check that. अगर आपकी location check किया perfect था, timing perfect है था, आपके अंदर ability, समझदारी, समझ, योग्यता सब बढ़िया है, तब भी काम इष्ट नहीं है, desired नहीं है, that means then check the third factor. That is karanam cha prithak vidham. इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट पृथक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। आप एक घर बनाते हैं हजार तरह के बाजार में आपको चीजें मिलती है, 50 तरह की लकड़ियां मिलती है, 50 तरह के आयरन्स मिलते हैं, 50 तरह की सीमेंट मिलते हैं, टाइल्स 50 तरह के मिलते हैं, हर अलग अलग टाइप के मिलते हैं। आप किस टाइप की चीज को चुनते हो, आप किस टाइप के स्कूल या टीचर्स चुनते हो, किस टाइप के बुक्स चुनते हो, किस टाइप की मेडिसिन चुनते हो, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट चुनते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका काम बनता है या नहीं बनता। एंड द फोर्थ वन, विविधाश्च पृथक चेष्टा, वेरियस टाइप्स ऑफ एफर्ट्स, आपकी कोशिश, आप कितना एफर्ट करते हैं। और एफर्ट हमेशा हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। चार व्यक्तियों को एक बुक दे दीजिए, बच्चों को भी दीजिए या बड़ों को दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी काम। एक घंटे के बाद उनको एक चैप्टर दीजिए कि आप पढ़ें, दो घंटे के बाद उनसे डिस्कस करिए। चार लोग अगर पढ़ रहे हैं, चारों का अलग अलग लेवल का नॉलेज होगा, जो रिजल्ट हुआ वो चार अलग अलग होगा। क्यों? एफर्ट तो चारों ने किया था, दो घंटे चारों ने लगाया था। किसी ने पढ़ते हुए फोकस्ड होकर पढ़ा, मेंटली भी फोकस्ड है, फिजिकली भी फोकस्ड है। दूसरा फिजिकली फोकस मतलब उसकी आंखें एक एक लाइन पर जा रहा है, पूरी एक एक लाइन उसने भी पढ़ा, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पढ़ा, कोई डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई। ऐसा नहीं कि एक पैसेज गायब कर दिया, आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं, पूरा एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस उसने पढ़ा, पर मेंटली वो आउट ऑफ द प्लेस था, उसके मन में और कोई विचार चल रहा था, और कोई चीजें चल रही थी। तीसरा वो स्किप करता है, एक थोड़ा पढ़ता है, समझ में आ गया, दूसरे चले जाता है। तो हर व्यक्ति का जो एफर्ट होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है। हो सकता है हम कहें कि पांच बच्चे पढ़ रहे हैं, पांचों पूरे एफर्ट लगाते हैं, पर रिजल्ट अलग अलग क्यों? वो एफर्ट किस लेवल का है, उसमें डेंसिटी कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है, वो मैटर करता है। हो सकता है आप ऑफिस में बैठे हो, आपको काम मिला, पापा ने बोला जाओ आज से ऑफिस संभालो, ट्रेनिंग लो, सीखो। दोनों बच्चों को अलग अलग ऑफिस संभालने दिया, एक बच्चा एक दो महीने के बाद परफेक्ट हो गया, रिलेशनशिप बढ़िया हो गया, काम समझ गया, अच्छा गोइंग ऑन वेरी गुड। दूसरा जब से ऑफिस गया तब से सारा गड़बड़ी है, क्लाइंट्स नाराज हैं, दूसरे लोग परेशान हैं। क्यों? ऑफिस में बैठा है, फोन लेकर के कभी बात कर लेता है, कभी फोन में गर्लफ्रेंड से बात में लगा है, कभी फ्रेंड को टेक्स्ट करता है, कभी काम करता है, एफर्ट 100% नहीं है। पांचवा है दैव, वो हम अगले संडे को सुनेंगे, मुझे पता है बहुत एक्साइटेड है सुनने के लिए, पर टाइम हो चुका है, नेक्स्ट टाइम सुनेंगे और आगे भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।